Oh my god, ma non c'è niente, 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 non पिछली बार हमने चर्चा किया था कि आध्यात्मिक गुरु को के सामने कभी आर्गुमेंट नहीं करनी चाहिए या उनको आदेश देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कई बार भक्त लोग गुरु के साथ इतना फैमिलियरिटी हो जाती है, कई बार शिष्यों की इतना परिचय हो जाता है गुरु से कि कई बार शिष्य अपना दासत्व भूल जाता है कि शिष्य चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी महान हो, शिष्य केवल शिष्य ही रहता है, वो कभी गुरु का गुरु नहीं बन सकता। जब गुरु का शिष्य ये समझने लगे कि अब उसको भी गुरु जितना ज्ञान हो गया है और अब वो भी गुरु के समान हो गया है, अब वो भी महाराज हो गया है, वह सब समझना लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब उसका अधपतन शुरू हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु इस बात को लेकर के बहुत ही सावधान रहने को कहा था। मायावादी लोग क्या करते हैं, वो लोग आध्यात्मिक गुरु जीवन आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत में स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे कि अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो आप एक सीढ़ी लेते हो चढ़ने के लिए, फिर आप सीढ़ी चढ़ जाते हो तो मायावादी लोग क्या करते हैं, सीढ़ी चढ़ के फिर उस सीढ़ी को लात मार देते हैं, अब सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आध्यात्मिक गुरु को वो लोग थोड़े समय के लिए स्वीकार करते हैं, पछे आध्यात्मिक गुरु को मानते नहीं है, उनको दीक्षा चाहिए आगे, तब वो उतने समय तक वो गुरु के शरणागत रहते हैं। कुछ समय के पश्चात जब उनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है तो वो गुरु का त्याग कर देते हैं। लेकिन शास्त्र में कहा गया है कि गुरु का अवहेलना करने वाला, गुरु का आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति यस्य अप्रसादान न गति कुतो, हरि स्थान अपराध तारे हरि नाम, भगवान के चरणों में अगर अपराध होता है तो आप हरि नाम का जप ध्यान से करके, अधिक माला जप करके उसका निवारण हो सकता है। लेकिन गुरु के चरणों में अगर अपराध किया हो तो उसका कोई परित्राण नहीं है। परित्राण का अर्थ होता है कोई उपाय नहीं है, उससे निकलने का कोई मार्ग नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि मैं गुरु के चरणों में अपराध करूंगा और गुरु तो पतित पावन है, तुम्हारा बिना केहो नहीं है, गुरु तो सबसे अधिक दयालु है, तो भगवान शायद एक बार क्षमा करे या ना करे, गुरु तो मुझे क्षमा करने के लिए ही तो उनका जन्म हुआ है। तो अगर कोई शिष्य ऐसा माने तो उसका पतन निश्चित है। जानबूझ के किया गया अपराध जो है, अपराध के जो हरि नाम के बल पे पाप करना, ये नौवां अपराध है ना, आठवां या नौवां, कौन सा, सातवां अपराध है, हरि नाम के बल पे पाप करना, नाम के बल पे पाप करना जानबूझ करके। इस तरह से भगवान का जो परम प्रिय शिष्य भक्त है, आध्यात्मिक गुरु, उनके आदेशों की उल्लंघन करने का अर्थ होता है भगवान के आदेशों का उल्लंघन करना। और जो शिष्य अपने गुरु को ही शिक्षा देना चाहे, गुरु को ही सिखाना चाहे, उसका फिर कोई भविष्य हो ही नहीं सकता। कई बार हम कहते हैं कि जब आपके गुरु किसी को संदेश दे, समझ लो कि आपके गुरु इधर उपस्थित हो और कोई व्यक्ति प्रश्न कर रहा है गुरु से, तो उसका उत्तर देने का अधिकारी कौन है? अगर आपके गुरु से कोई प्रश्न कर रहा है तो उसका उत्तर किसको देना चाहिए?
गुरु को
देना चाहिए, राइट। यद्यपि आप उसका अंतर, उसका आंसर जो है भली भांति जानते हो, उसका उत्तर आपको पूरी तरह से पता है, तो किसको उत्तर देना चाहिए? गुरु को देना चाहिए या शिष्य को बोलना चाहिए? शिष्य ये समझेगा नहीं, गुरु को कष्ट क्यों देना, ये आंसर तो मैं ही दे सकता हूं, तो क्या करना चाहिए फिर? गुरु को ही देना चाहिए कि शिष्य को देना चाहिए? अगर शिष्य बीच में अगर इस तरह से बोलता है तो उसका अपरिपक्वता सिद्ध होता है, उसका मर्यादा व्यतिक्रम होता है। कई बार ऐसे फालतू क्वेश्चन लेके आते हैं गुरु के सामने, तभी अगर हम लोग गुरु के पास होते हैं तो हमें भी लगता है कि क्या क्वेश्चन पूछ रही है, लेकिन फिर भी उत्तर देने का जिम्मेदारी मेरा या हमारा किसी का नहीं है, उसका जिम्मेदारी गुरु का है, क्योंकि गुरु से प्रश्न पूछा गया है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब तक आपको बोला ना जाए आपको बोलना नहीं चाहिए, जब तक आपको कहा ना जाए ठीक है आप बोलो अभी, तब तक आपको नहीं बोलना। जैसे भी एक बार हम गए थे एक जगह पर बॉम्बे में, तो वहां पर कई लोग मिलने आए थे गुरु के पास, तो फिर गुरु का इच्छा था कि एक्चुअली वही लेक्चर दे रहे थे, लेकिन उनका इच्छा था कि अब थोड़ा तुम बोलो, अचानक से बोल दिया। अचानक से मैं तो बाजू वाले कमरे में था, अचानक से बुलाया, बोल महाराज बुला रहे आपको, तो मैं अचानक से फिर गया कमरे में, कमरे में गए, महाराज ने सीधा ही बोल दिया मैं चाहता हूं कि तुम 5-10 मिनट इनको कुछ उपदेश दो, तो अचानक से ही, और गुरु पास में ही थे, सुन रहे थे हम मेरी सारी बात। तो ऐसी ऐसी अवस्था में आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपको आदेश हुआ है गुरु की ओर से, लेकिन जब तक गुरु ना बोले तब तक आपको केवल सुनना है। ये एटिकेट है, दिस इज ये वैष्णव आचार है। गुरु के सामने जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था आर्ग्यूमेंट्स, गुरु के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए। गुरु कहते कि नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं गुरु मां ये ठीक नहीं है, आप जो बता रहे हो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसी चीज होती है, मेरे अनुभव में ऐसा है, कई बार हो सकता है कि जैसे आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक विषय में एक्सपर्ट होते हैं, आध्यात्मिक विषय में, कृष्ण भक्ति के विषय में, लेकिन कई बार वो मेडिकल विषय में एक्सपर्ट नहीं होते, मेडिकल में उनको इतना नॉलेज नहीं होता, कई बार फाइनेंस को लेकर के इतना नॉलेज नहीं होता, कई बार टेक्नोलॉजी को लेकर के उनका इतना नॉलेज नहीं होता। अगर उस समय अगर कोई शिष्य इस विषय में गुरु से चर्चा करे और उस समय अगर वो अपनी एक्सपर्टाइज गुरु को दिखाना चाहे, समझ लो कि फाइनेंस की बात हो रही है और गुरु कहते हैं कि नहीं इसको इस तरह से होना चाहिए, और अगर आपने आप फाइनेंस के एक्सपर्ट हो तो आप बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हो और ये साबित करना चाहते हो कि देखो मुझे आपसे अच्छा आता है, तभी भी वो शिष्य का मूर्खता माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार मेरा चर्चा हुआ है टेक्नोलॉजी को लेकर के गुरु के साथ, अभी कुछ टेक्नोलॉजिकल टर्म्स गुरु जी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी का उनका विषय नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी में भी क्योंकि वो गुरु है इसलिए वो जो बोलते हैं उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब वो अच्छा अवसर हमें प्रदान करते हैं, मेरे केस में ऐसा हुआ है, जब अच्छा अवसर मिलता है तो फिर वो उस बात को मैं अच्छी तरह से शिष्य के योग्य हो, शिष्य बोल सके इस तरह से प्रस्तुत किया जाए, तब फिर गुरु बोलता है ठीक है ये तुम्हारा विषय, तुम कर लो। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरु के साथ आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो सकती। ठीक है, गुरु जी कह रहे हैं तो मान लो उनकी बात। सो हो सकता है कि शिष्य एक पुत्र का समान भी होता है, जब पुत्र इस तरह से पिता के साथ थोड़ा बहस करता है किसी विषय पे, तो उस बहस में उसका अपमान करने का इरादा नहीं होता है, राइट? तो उस तरह से अगर शिष्य गुरु के साथ बहस करते हैं, लेकिन उस समय प्रभुपाद ने ऐसे लास्ट टाइम एग्जांपल में सुना था, तो शिष्य भी क्वालिफाइड होना चाहिए, अर्थात सभी गुरु का सबसे प्रिय होना चाहिए, गुरु की सारी आज्ञा का पालन करता होना चाहिए, सभी इच्छाओं का पूर्ति निष्ठावान होना चाहिए। ऐसा शिष्य को ये लिबर्टी शायद गुरु दे सकते हैं कि वो बहस करना चाहे तो कर सकता है किसी विषय को लेकर के, लेकिन बहस करना ये अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा शिष्य वो माना जाता है जो गुरु के आदेश को उनके आदेश के पहले ही समझ आए, बोलने से पहले समझ ले। वो बेस्ट डिसाइपल वही है कि गुरु क्या चाहते हैं वो बोलने के बाद करे, ऐसा नहीं। कई बार क्या होता है 20 साल पहले गुरु ने कोई आज्ञा दी है, उस आज्ञा के पीछे क्या उद्देश्य था उसको समझे बिना 20 साल से लगातार उसी आदेश का पालन करते हुए आ रहे, और परिणाम क्या आएगा, 20 साल पहले आप जहां थे आप 20 साल के बाद भी वहीं के वहीं रहोगे, क्योंकि गुरु के आदेश के पीछे क्या उद्देश्य था इसको आप जाने ही नहीं, इसको आप समझे ही नहीं, क्यों क्यों कहना चाहते हैं इसके विषय में, वो क्या चाहते हैं। इसलिए गुरु के मनोविष्ट को समझने का प्रयास करना चाहिए, गुरु के सामने अपनी बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि मैं कितना बुद्धिशाली हूं। जैसे दूसरा एक क्वालिफिकेशन शिष्य का ये होना चाहिए कि वो अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने अपनी कोई क्वालिफिकेशन दिखाए नहीं, अपना कोई योग्यता दिखाए नहीं। योग्यता विचारे नहीं किच्छू नहीं पाई तुम्हारे करुणा सा, भक्तिवान ठाकुर कहते हैं कि योग्यता विचारे, अगर मैं योग्यता का विचार करता हूं कि प्रयास करता हूं मैं योग्यता क्या है मुझ में, तो यानी मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत कॉन्टेम्पलेट किया, एक दो दो तीन तीन घंटा तक बैठ करके लिस्ट बनाया कि मेरी कौन सी योग्यता है, मुझ में क्या क्या योग्यता है, मैं क्या कर सकता हूं, मुझ में किसमें कौन सी चीज मुझे अच्छी आती है, वो सारी चीज एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद अंत में पता पड़ा कि हर एक चीज के अंत में लिखा है ये गुरु महाराज की कृपा से हुआ, ये गुरु महाराज की कृपा से हुआ, ये इनके आदेश के कारण हुआ, ये इनके कृपा के, तो अंत में परिणाम क्या हुआ, तुम्हारा करुणा सार, आपकी करुणा ही सार है, कि कुछ योग्यता मेरी तो कुछ है ही नहीं। आप ध्यान से देखोगे तो अपने योग्यताओं के विषय में अंततः गत्वा आपको आपका जो मूल है वहीं पर जाएगा गुरु के पास, तो गुरु जी ने आपको कृपा किया इसलिए हुआ ये, किचू नहीं पाई तुम्हारा करुणा सार, करुणा ना होले कांदिया तो प्राण रखे बुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सबसे क्वालिफाइड डिवोटी थे, इतने विद्वान थे, जैसे मैंने आपको सब जानते हो, आप सब 7 साल की आयु में पूरी भगवदगीता कंठस्थ थे उनको, सोचिए पूरी भगवदगीता 700 श्लोक पूरा कंठस्थ। बाद में तो उनको चैतन्य भी पूरा कंठस्थ था, श्रीमद भागवत भी पूरा कंठस्थ था, 18,000 श्लोक सोचिए सारा कंठस्थ, चैतन्य चरितामृत पूरा 1,000 श्लोक है उसमें भी कंठस्थ, पूरा पूरा याद है, सारे वेद इतिहास सट संदर्भ ये सब उनका मुखस्थ था। सबने इतने सब श्लोक इतना ये तो सब स्पिरिचुअल नॉलेज, इसके अलावा वो एस्ट्रोनॉमी भी जानते थे, आकाश का विज्ञान एस्ट्रोनॉमी भी अच्छे से जानते थे, बहुत सारी लैंग्वेज आती थी उनको, लैंग्वेज का भी बहुत नॉलेज था उनको, और इस तरह से सभी क्षेत्र में इतने विद्वान थे, बुद्धिशाली थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गए दीक्षा लेने के लिए, तो उनके गुरु जो थे वो अनपढ़ थे, गौरकृष्ण बाबा जी महाराज। उनके गुरु ने कहा कि मुझे तो मेरा नाम अगर कोई बोले कि आप आपका नाम लिखो, तो मैं मेरा नाम भी नहीं लिख सकता, मुझे तो इतना भी नहीं आता, नाम लिखना भी नहीं आता मेरा, गौर प्रसाद बाबा जी महाराज। और तुम कहां इतने विद्वान विमल प्रसाद, और मैं ठहरा एक अनपढ़ गंवार, मुझे कुछ आता नहीं, मैं तुम्हारे गुरु बनने के योग्य नहीं हूं, मना कर दिया। तो भक्तिदास सरस्वती महाराज ने ये नहीं कहा कि आप ऐसे कैसे मना कर सकते, देखो मैं कितना स्टार हूं, देखो इस मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे नहीं, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, घास का तिनका अपने दांत में लेकर के अपने आप को प्रस्तुत किया और कहा कि मैं मूर्ख नंबर एक हूं। यही चैतन्य महाप्रभु का है। महाप्रभु ने जब प्रकाशानंद सरस्वती मायावादी सन्यासी थे, तो चैतन्य महाप्रभु बनारस जाते थे, तो पहली बार जब बनारस गए तो उनको कहा कि तपन मिश्र थे और चंद्रशेखर थे, तो उन्होंने कहा कि या तो हमें यहां से बनारस से हटाओ, या तो फिर इन लोग का उद्धार करो, बोले आपका इतना अपमान करते हैं वो हमसे सुना नहीं जाता, वो लोग आपको पागल कहते हैं, भगवान को हम आपसे सुन नहीं पा रहे, हम लोग क्या करें। तो महाप्रभु पहली बार आए तो कुछ बोले नहीं, चले गए। फिर वापिस आते समय वृंदावन से जब वापिस आए, तब फिर उन्होंने देखा कि शिष्य भक्त लोग बड़े नाराज थे, उन अपमान से सहन नहीं कर पा रहे थे, तो फिर एक सभा आयोजन हुई जिसमें सभी सन्यासियों को बुलाया गया, तो चैतन्य महाप्रभु को भी बुलाया, तो सब सन्यासी एक कमरे में बड़े हॉल में बैठे हुए थे, उसमें सबका लीडर था प्रकाश आनंद बैठे हुए थे, और चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए सही, लेकिन दरवाजे के भीतर नहीं आए। पहले के समय में ऐसा था, वो तो मैंने भी देखा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, पहले के समय में घर के बाहर एक छोटा सा जगह रहता था और वहां पर पानी का व्यवस्था होता था, तो घर में प्रवेश करने से पहले पांव धोने पड़ते थे, जो भी आता है, कोई भी आता है। पहले आपके गुजरात में ये पोल जो है, उसमें पोल में होता था ये सब, कि सीढ़ी ऊपर चढ़ने से पहले नीचे ही पांव धोए जाते थे, पांव धो के फिर घर में प्रवेश किया जाता था। ये सब जगह भी, जगन्नाथपुरी में भी सिंह द्वार के बाहर पानी धोने का व्यवस्था है, देखा आपने, सिंह द्वार के बाजू में ही है, वहां पर आप पांव धोकर के आप जा सकते हो। तो यही परंपरा कई समय से चल रही, यही वैदिक सिस्टम थी। तो वहां पांव धोने का जो जगह था, वहां पर जाके बैठ गए चैतन्य महाप्रभु। तो लेकिन इतना प्रकाश था उनके शरीर से, तो प्रकाश आनंद सरस्वती स्वयं, जो नेता थे वो स्वयं खुद खड़े होकर के चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़ करके कमरे के भीतर लाए और कहा कि आप इतने बड़े सन्यासी तेजस्वी होकर के ऐसी तुच्छ स्थान पे क्यों बैठे हो। तो बोले मैं तो आपके जैसा बड़ा तेजस्वी नहीं हूं, आपके आप तो बड़े सब लोग विद्वान हो, मैं तो इतना ज्ञानवान नहीं हूं, मैं तो हूं मूर्ख। गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन, मेरे गुरु ने देखा कि मैं मूर्ख नंबर एक हूं और मुझे कहा कि वेद शास्त्र वगैरह तुझे कुछ समझ नहीं आएगा, तो हरि नाम का मंत्र जप कर, यही सभी शास्त्रों का सार है, हरि नाम जप कर, तो इसलिए मुझ में कोई ज्ञान नहीं। तो यही एक्चुअली चैतन्य चरितामृत पूरी तरह से एक भक्त के व्यवहार को, एक भक्त के जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए ही लिखा गया है। उसमें बहुत बाहर के लोगों को इतना रुचि नहीं आएगा, लेकिन भक्त लोग को बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें सारे देखो महापुरुष स्वयं अपने आचरण से सिखा रहे कि एक एक भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए। गुरु मोरे मूर्ख देखी, गुरु ने देखा कि मैं मूर्ख नंबर एक हूं, यही यही प्रमाण है। सनातन गोस्वामी ग्राम्य व्यवहार है पंडित ताई सत्य मानी, ग्राम्य व्यवहार है सब उनको पंडित बोलते थे। प्राइम मिनिस्टर थे ना, एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक प्राइम मिनिस्टर थे रूप सनातन। तो इतने विद्वान थे कि राजा भी उनको पूछे बिना पानी भी नहीं पीता था, इतने विद्वान थे सनातन गोस्वामी। और ऐसे डिसीजंस लेते थे कि जैसा डिसीजन कोई नहीं ले पाता था, और साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते थे, किसी से बात करते थे उसके मन में क्या चल रहा है तुरंत समझ जाते थे, बहुत तेज बहुत स्मार्ट थे सनातन गोस्वामी। और सब लोग उनको पंडित बोलते थे, बड़े सनातन गोस्वामी तो पंडित है, विद्वान है, बहुत विद्वान है। तो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए आधी रात को, 2 बजे 1-2 बजे रात को, आधी रात को चैतन्य महाप्रभु के पास मिलने गए, आधी रात को महाप्रभु, वही दिन महाप्रभु रात को जगे थे, बाकी सब सो गए, महाप्रभु उस दिन जगे थे रात को। तो महाप्रभु जगे तो किसी ने पूछा आप क्यों जग रहे हो, तो कहा कि मुझे कोई मिलने आने वाला है। तो कौन मिलने वाला है, तो महाप्रभु बोले नित्यानंद को बोला कि तुम जाओ बाहर खड़े रहो, कोई आता तो भेजना इधर। नित्यानंद को खड़े रखा, आप सोचिए भगवान ने नित्यानंद को खड़ा रखा कि स्वयं अपना प्राण नित्यानंद, तो उनको बाहर रखे कि अगर वो लोग आते हैं तो तुम्हारे आचार्य लोग कहते हैं कि नित्यानंद को इसलिए बाहर रखा गया महाप्रभु के द्वारा क्योंकि जब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होता है तब तक चैतन्य महाप्रभु का कृपा हो ही नहीं सकता। तो डायरेक्ट वो मेरे पास आए रूप सनातन तो मेरे कृपा नहीं हो पाएगा उस पर, तो नियम के अनुसार पहले नित्यानंद के थ्रू ही आना पड़ेगा। तो पहले नित्यानंद को ही बाहर खड़ा कर दिया, बोले तुम खड़े रहो बाहर, जब भी कोई आया तो मेरे पास भेज देना। तो रूप सनातन पूरा काला कंबल सब लगा करके डाकू जैसे पूरा वेश बना करके आए आधी रात को, कोई इधर ऐसे कोई डिवोटी ऐसे सड़क पेड़ के ऊपर सो रहा था, कोई पेड़ के नीचे सो रहा था, कोई ऐसे सड़क पे सो रहा था, रोज पूरा दिन कीर्तन किया था, सब लोग इतने थके हुए थे कि सब लोग सो गए थे, कहीं पर भी जहां जगह मिला सो गए थे। रूप सनातन आए आधी रात को, आकर के उन्होंने देखा कि इतना प्रकाश प्रकाश तेजस्वी नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद दूर से पहचान लिया कि ये दो ही है, आधी रात को और कोई आ ही नहीं सकता, और ढूंढते ढूंढते इधर ही आ रहे सब, इधर बोले इधर आओ जाओ महाप्रभु बुला रहे तुम्हें। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद लिया, फिर महाप्रभु के पास गए। तो महाप्रभु के पास गए और जाकर कहा आपना रहिताई तक कि छुई न जानी, लोग मुझे ग्राम्य व्यवहार से लोग मुझे पंडित कहते हैं लेकिन के आमी कहने आमाई जा रहे, मैं कौन हूं, मुझे प्रकार के भौतिक जो कष्ट भुगतना पड़ता है वो क्यों भुगतना पड़ता है ये भी नहीं मुझे पता, तो मैं किस तरह का पंडित हूं। तो दांत में तिनका लेकर के गले में कपड़ा बांध करके वो गले वस्त्र में वो एक पशु की भांति अपने आप को प्रस्तुत करके महाप्रभु के शरण लिया। तो यही शास्त्र का सभी शास्त्रों का विधान है कि अपने आध्यात्मिक गुरु के सामने हम हमेशा अपने आप को जीवन भर, ऐसा नहीं कि वो हम मूर्ख रहेंगे। और भौतिक जीवन आप आज देख रहे हो लेकिन आपका आध्यात्मिक गुरु के जो साथ का जो संबंध है वो संबंध तो जन्म जन्म का है, चक्षुदान दे लो जय जन्मे जन्मे प्रभु सही है ना, आता आपको पूरा कंठस्थ है गुरु पूजा, सबको कंठस्थ है, पूरा कंठस्थ कर लो, ये सभी आरती कंठस्थ होनी चाहिए। सो चक्षुदान दिला जी जन्मे जन्मे प्रभु से ही, ये जन्मो जन्म के प्रभु है, ऐसा नहीं कि इस जन्म में दूसरे जन्म में और कोई, ऐसा नहीं। सनातन संबंध भगवान गुरु के साथ हमारा, दूसरे जन्म में भी गुरु आपके साथ रहेंगे हमेशा। लेकिन अगर आपका दूसरा जन्म भगवान के धाम में है, गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में है, तो आपको गोलोक वृंदावन में भी इन्हीं गुरु का सेवा करना है। तब आपके आध्यात्मिक गुरु वहां पर दूसरे आध्यात्मिक शरीर में होंगे और वहां पर आपको निर्देश देंगे कि आपको अभी ये करो, जाओ अभी फूल भगवान के लिए फूल तोड़ के आओ, ये करके आओ, इस तरह से इस प्रकार के आदेश देते। इसलिए गुरु के साथ जो हमारा संबंध है वो अभी का नहीं है और हमेशा रहने वाला है। इसलिए ये सोचना, ये इस तरह से सोचना आरंभ करना चाहिए आपको कि ये गुरु जी आपके जन्म जन्म के आपके साथ ही रहने वाले, इस जन्म के बाद भी आपके साथ रहेंगे और उनके आदेश का पालन करना यही एकमात्र आपका शाश्वत लक्ष्य है, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, बाद वाले जन्म में भी यही कार्य है। क्यों ऐसा? क्योंकि कृष्ण ऐसा चाहते हैं, भगवान ऐसा चाहते हैं कि आप गुरु के आदेश के माध्यम से मेरे पास आओ। अगर आप सभी शास्त्रों में देखोगे यही प्रमाण प्राप्त होगा, तुम गुरु के आदेश के माध्यम से मेरे पास आओ। सो भक्तों को ये समझना चाहिए कि कभी भी अपनी योग्यताओं को, अपने अचीवमेंट्स को गुरु के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। आई मीन टू से कि अपने अकम्प्लिशमेंट है उसके वखान नहीं करने चाहिए। तुमने जो किया है वो सब उनकी कृपा से हुआ है। कई बार होता है ना, कुछ भक्त बोलता है ऐसा, कई बार व्यास पूजा ऑफरिंग में हम देखते हैं, व्यास पूजा ऑफरिंग में होता है, देखा ना, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बाद में मैंने वो किया, बाद में वो किया, और ये सब कैसे हुआ था? वो गुरु की कृपा से हुआ था। तालियां, तालियां बजाओ ऐसे। तो इस तरह से अपने वखान नहीं करने चाहिए गुरु के सामने। एक बार तो गुरु जी से खुद ही बोल दिया व्यास पूजा के दिन, ठीक है गुरु के विषय में बोलो, अपने विषय में मत बोलो। माइक में खुद ही बोल दिए, अपने विषय में मत बोलो, गुरु के विषय में बोलो। सो इस तरह से अपने वखान नहीं करने चाहिए। जैसे सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है, जैसे लेकिन मैं अपने ढंग से ऐसा मानता हूं कि कई बार गुरु ने मुझ पर कृपा की है तो उसको मैं शेयर करना चाहता हूं कि मैं देखो गुरु ने मुझ पर कैसे कृपा किया था। ये अगर मैं शेयर करना चाहता हूं तो इसमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संभव है कि आप गुरु के साथ, गुरु के बदले अपना ही गुणगान गाना शुरू कर दोगे कि देखो देखो गुरु जी ने तो मुझ पर ऐसा कृपा किया था, तो कौन स्पेशल है, गुरु स्पेशल है, तुम स्पेशल हो। तो इसलिए अगर आपको बताना भी है तो बहुत सावधानी से बताना चाहिए, नहीं बताओ तो कोई अपराध नहीं होने वाला कि गुरु ने मुझ पर कृपा किया था ये। अगर बताना है तो सावधानी से बताना चाहिए। तो इस तरह से गुरु का महिमा बढ़ना चाहिए, शिष्य का महिमा नहीं बढ़ना चाहिए, शिष्य की महिमा तब बढ़ती है जब गुरु ये कह दे कि मेरा गौरव इस शिष्य के माध्यम से है, ये शिष्य का गुरु होने में मुझे गर्व हो रहा है, उस समय तुम्हारा महिमा बढ़ रहा है। कई बार मैंने एक बार ऑफरिंग लेटर में लिखा था बहुत साल पहले कि हमें तो बड़ा गर्व होता है ये कहने में कि मैं ये गुरु जी का शिष्य हूं, मैं ये गुरु जी का शिष्य हूं, ये गुरु जी का शिष्य, हमें तो बड़ा गर्व होता है, लेकिन क्या गुरु को कभी गर्व होता है ये कहने में मैं इसका गुरु हूं, मैं इसका, इस शिष्य का गुरु हूं, मैं इस शिष्य का गुरु हूं? ऐसा कभी गर्व होता है? जिस दिन ऐसा गर्व होने लगे तब जाके शिष्य सफल हुआ है ऐसा माना जाता है। तो शिष्य की सफलता वहीं पर है कि जब आपके गुरु, कई बार कहते हैं ना ऐसे कार्य मत करो, ऐसा प्रयास मत करो कि भगवान को देखो, आप भगवान को देखने के लिए प्रयास करो, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो सब कुछ त्याग दे, आप मैं श्रीमद ये डीटी वर्शिप करता रहूंगा, भगवान के विग्रह को दर्शन करूंगा, भगवद्गीता भागवतम पढ़ता रहूंगा, हरिनाम का जप करता रहूंगा, बस इससे मेरा अपना मुक्ति हो जाएगा और भगवान मुझे प्रसन्न है। ऐसे कार्य इससे इतना परिणाम नहीं आता है, लेकिन क्या परिणाम आता है, इस प्रकार से कार्य करो कि भगवान आपको देने के, आपको देखने के लिए विवश हो जाएगा। ये सब जगह चर्चे हो रहे हैं इस शिष्य का, ये भक्त का, सब कोने कोने से बात आ रही है, इधर से देवलोक देवता लोग बता रहे, इधर से गरुड़ बता रहे, इस तरह से नारद मुनि बता रहे, सब लोग बोल रहे कि ये मेरा भक्त जो है वो बहुत प्रचार कर रहा है, बहुत सेवा कर रहा है। देखना पड़ेगा कौन है भाई, ऐसा कौन सा भक्त है मेरा, भगवान खुद आपको देखने आए, भगवान को आना पड़े देखने के लिए, ऐसा सेवा करो तो सेवा, तब तो सेवा पे अधिक बल दे आ जाए। प्रभुपाद कहते हैं डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस का अर्थ है सेवा करना है। सेवा का जो सबसे उत्तम तरीका है वो है वैष्णव सेवा, सबसे उत्तम सेवा, भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्तों की जो सेवा है वो सबसे उत्तम सेवा है, वैष्णव की सेवा। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का भक्त बनता है और सेवा करता है, तो अपने कार्यों से उसको भगवान को आकर्षित करने का प्रयास करना चाहिए, तब फिर गुरु भी आपसे प्रसन्न होंगे, भगवान भी प्रसन्न होंगे। तो इस तरह से अपने आपको कभी गुरु के समकक्ष नहीं मानना चाहिए, उनके आसन के समान भी नहीं बैठना चाहिए, सामने गुरु बैठे, सामने चेयर लगा दी, हाँ गुरु महाराज बताइए क्या बता रहे थे आप चेयर लगाकर बैठ गए। जब तक आपको आध्यात्मिक गुरु बैठने का आदेश ना दे, तब तक आपको नहीं बैठना चाहिए। आजकल तो घुटनों की समस्या होती है, नहीं एजेड लोगों को होता है घुटनों की समस्या, तो क्या किया जाए, खुद ना खुद चेयर ढूंढ के बैठ जाओ, नहीं, क्या किया जाए, खड़े रहो जब तक गुरु आपको आदेश ना दे। फिर जब आपको गुरु स्वयं कहते हैं कि ठीक है तुम बैठो, तब बैठा जाए। अगर आपके आपकी खड़े रहने की क्षमता समाप्त हो जाए तो आप उस कमरे से बाहर चले जाओ, गुरु की आज्ञा ले करके, कि मैं इतना खड़ा नहीं रह पाता। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं कि ये छोटी छोटी बात होती है, आपको लगता है कि इसमें क्या, कौन सी बड़ी बात है, इसमें क्या, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आचार विचार में। ये आवश्यक है कि हमारा आचरण बिल्कुल शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। सो संक्षेप में एग्जाम्पल एक दो पॉइंट बता देता हूं आपको, जो कि कभी भी दूसरे आध्यात्मिक गुरुओं के साथ गुरु की आज्ञा के बिना अधिक समय बिताना नहीं चाहिए दूसरे आध्यात्मिक गुरुओं के साथ, आपके आध्यात्मिक गुरु की परमिशन लिए बिना। क्यों ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि एक बार एक भक्त था, अपने गुरु का लेक्चर सब सुनता था, लेकिन उसको ऐसा था कि उसको अधिक ज्ञान की इच्छा है, अधिक उसको स्कॉलर बनने का इच्छा था, विद्वान बनने का इच्छा, तो उसने और किसी आध्यात्मिक गुरु का संपर्क किया, उनका एसोसिएशन करना शुरू कर दिया, उनकी यात्राओं में चला गया, उनके लेक्चर सुनना शुरू कर दिया, ये सब करना शुरू कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ कि अपने आध्यात्मिक गुरु का परमिशन भी नहीं लिया, और बाद में तो जब उनके आध्यात्मिक गुरु के लेक्चर होते तो इग्नोर करना शुरू कर दिया, और उनके गुरु का लेक्चर का तो नहीं बैठेगा, दूसरे गुरु का लेक्चर का तो बैठेगा, है ना, खुद के गुरु के लेक्चर में नहीं बैठता था, है ना, ऐसा कई बार देखा जाता है। और उसके गुरु अपने गुरु की व्यास पूजा में नहीं जाएगा, दूसरे गुरु की व्यास पूजा में जाता है, आई सीन दैट, देखा ऐसे मैंने। तो और ऑफ कोर्स ये सब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसके हृदय में कोई परिणाम नहीं, लेकिन ये धीरे 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 उस भक्त का क्या हुआ, ये दूसरे किसी भक्त की बात कर रहा हूं मैं, तो वो भक्त का क्या हुआ कि उसका गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो कमजोर होता गया, और कमजोर होते होते कि उसका प्रेम चला गया, विश्वास चला गया गुरु के ऊपर से, और गुरु के साथ का जो संबंध था वो भी ओझल हो गया। तो क्या हुआ, दूसरे गुरु के साथ संबंध बंधा, जो अपने गुरु का नहीं हुआ दूसरे गुरु का क्या होगा, इजंट इट। तो परिणाम यह आया कि उसके गुरु के चरणों में अपराध करना शुरू किया और माया के चंगुल में फंस गया, भक्ति वक्ति सब कुछ छोड़ करके चला गया। इसलिए कभी गुरु की आज्ञा के बिना ऐसे उल्टे सीधे कार्य नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति, एक भक्त को टेंपल का मैनेजर बनाया गया था, तो प्रभुपाद के आदेश को जनरली नियम ऐसा है कि किसी को भक्त को भी मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा कोई भी बड़ी सेवा होती है मैनेजमेंट को लेकर के, तो उसको जनरली ये सब पढ़ना पड़ता है कि प्रभुपाद जी ने ये संचालन को लेकर के क्या क्या आदेश जारी किए थे, ये सब पढ़ना पड़ता है कि प्रभुपाद ने कहां कहां क्या लिखा है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रभुपाद ने कहा कि मैनेजमेंट का सबसे पहला सिद्धांत है कि मिनिमम कैश ट्रांजेक्शन जीरो हो जाए तो बेस्ट, कैश ट्रांजेक्शन होने ही नहीं चाहिए, ये संचालन का एक नियम है प्रभुपाद ने बताया था, कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं। अभी तो आपकी सरकार, मोदी सरकार भी ये लाना चाहती है, नो कैश ट्रांजेक्शन, राइट, इससे करप्शन को सीधा ही इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर कैश। तो प्रभुपाद ने ये बताया था कि इस कौन में कैश ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, जितना हो सके उतना कम करो। तो ऐसे अनेक प्रभुपाद ने संचालन को लेकर के अनेक नियम दिए है प्रभुपाद ने, तो वो सब पढ़ना चाहिए। तो भक्त एक था ऐसा, वो पढ़ना ब्रह्मचारी था, तो उसे पढ़ने लगा, लेकिन बाद में उसको लगा कि मैं अगर प्रेसिडेंट बनूंगा तो एकदम सुपर होना चाहिए, सब कुछ हाई फाई होना चाहिए, एकदम परफेक्ट, कोई कॉर्पोरेट जैसा होना चाहिए एकदम। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने स्टीफन कोवे करके एक बड़ा व्यक्ति है, स्टीफन कोवे, और उसने एक किताब लिखा है 7 हैबिट्स करके मैनेजमेंट को लेकर के, तो उसने वो किताब पढ़ना शुरू कर दिया, और उस किताब से मैनेजमेंट के जो फॉर्मूलास और फंडामेंटल्स वो सब यूज करना शुरू किया उसने मैनेजमेंट में। तो परिणाम क्या हुआ कि वो इतना एक्सपर्ट हो गया ये कोवे के मैनेजमेंट में कि उसने भक्ति वक्ति सब छोड़ करके कोवे इंस्टीट्यूशन में सेमिनार प्रेजेंटर बन गया, वो सब मैनेजमेंट सब कुछ छोड़ करके रिजाइन कर दिया, और वो कोवे का इंस्टीट्यूट था उसमें प्रोफेसर बन गया और सेमिनार पढ़ाने लगा। इसके क्या फायदा हुआ, इसलिए ऐसे सब लिटरेचरों को अधिक से ऐसा नहीं कि प्रभुपाद की किताबों को छोड़कर और कि सब किताबों पढ़ना शुरू कर, ये सब नहीं करना चाहिए। और मायावादी साहित्य और सब साहित्य पढ़ने में लगेगा कोई ये उपनिषद वो उपनिषद ये इस बाप इसका पुराण उसका पुराण, तो परिणाम आएगा कि यू नो प्रभुपाद में गलती ढूंढना शुरू कर देगा कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में ढंग से तात्पर्य नहीं लिखे, एक भक्त ने भी बहुत बीच में कहीं ऐसा बोल दिया था कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में ढंग से तात्पर्य, वो इतना विद्वान भक्त है और बोल दिया तो हल्ला मच गया, और तुम कैसे बोल सकते हो ऐसे, वो सब फिर उसको अपनी गलती पता पड़ गई, मेरी मुझसे गलती हो गई, तो फिर उसने गलती अपना सुधार दिया। लेकिन कहने का अर्थ है कि अगर कोई भक्त ये सोचता है कि आई कैन चीट माई गुरु, आई कैन चीट कृष्णा, सो भूल जाओ, वो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। तो इस तरह से कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने आध्यात्मिक गुरु से अधिक जान सकता हूं या जानने का प्रयास करूंगा। प्रभुपाद सेड व्हाट एवर यू नीड टू नो इज देयर इन माई बुक्स, तुम्हें जितना जानने का आवश्यकता है वो सारा सब कुछ जो जितना भी आपको जानने की आवश्यकता है वो सब मैंने अपनी किताबों में रखा हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रभुपाद ने अपना जीवन का अधिक समय किताबों में लिखने में दिया है, मीन्स आपको जो जानने की आवश्यकता है वो प्रभुपाद के किताबों के बाहर है ही नहीं, सब कुछ इसमें ही है। और अगर कुछ बाहर है तो वो आपके जानने की आवश्यकता नहीं है। सो इस तरह से हमें गुरु के प्रति हमारा व्यवहार इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम अगली चर्चा करेंगे गुरु के गुरु भाइयों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। सो वी स्टॉप हियर। ओके किसी को